Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Vishnuyam Devaha भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमदेवहितंयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ
माण्डुक्य उपनिषत् मन्त्र एक
ॐ इति
एतत् अक्षरम् इदगं सर्वम्
तस्योपव्याख्यानम् भूतम् भविष्यत इति सर्वम् ओंकार एव यच्च अन्यत त्रिकालातीतम् तदपि ओंकार एव
ओम। यह अक्षर ही सब कुछ है। इदगम सर्वम इदम शब्द दे दिया है, सब कुछ है। इदम कोई चीज शाश्वत होती है, अपने अंतिम स्वरूप में होती है, रहने वाली होती है, तो वो चीज को निर्देश करके नाम लेके बताया जाता है। अब इदम यानी कौन सा नाम, किसका नाम, किसका आकार? इदम क्या कांस्टेंट रहने वाला है? सोचिए, इदम एक तरीका रहता है, इदम तो बदलता रहता। इदम यानी क्या? सब कुछ यानी क्या? सब कुछ कहते हैं तो कोई ठोस चीज के बारे में नहीं बताते हैं, इसी से पता लगता है। और ओम यानी, अरे ओम के बारे में तो पूरा उपनिषद है, और यही उपनिषद नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में बात की है। तो ओम जो है उसके बारे में हम बता सकते हैं, प्रश्नोपनिषद बता सकता है, मैत्रेय उपनिषद ने बताया, छांदोग्य उपनिषद ने बताया, भगवद गीता ने कहा ओम तत्सद इति निर्देश्यः ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः। तीन प्रकार से ये ब्रह्म जो है वो बताया जाता है। भगवद गीता, श्रीमद भगवद गीता भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो ये यहाँ ओम है, एक कांस्टेंट फैक्टर है, जो अविनाशी परब्रह्म है, जो अक्षर है, और ये सब है। तो ये सब है, ये जो सब की व्याख्या है वो क्या है, तो वो अभी दृष्टांत से समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसके ऊपर पूरे मांडू के उपनिषद की वो दृष्टांत जो है वो नींव है। और वो कौन सा दृष्टांत है, तो बोले रज्जु और सर्प का दृष्टांत देके बात की जाती है। रज्जु है, अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान के ऊपर क्या क्या है अब इन सब हमारे अधिष्ठान के ऊपर, अधिष्ठान एक ही है, इसके बारे में मैं बता सकती हूँ कि रज्जू इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, ये रंग का है, ये वजन का है। अभी रज्जू के बारे में मैं आपको इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो सच है या झूठ है?
हाँ?
सच है। मैं रज्जू के बारे में आपको दे देती हूँ कि रज्जू ऐसा ऐसा है, तो आप सबने क्या कहा कि सच है। ऐसे ही ओमकार के बारे में कहते हैं कि ओम मकार मात्रा वाला है, उकार मात्रा वाला है, अकार मात्रा वाला है, चौथी भी मात्रा है और ऐसा ऐसा है, तो बोले ठीक है। तो अब इन सब से क्या वास्ता है? तो बोले थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजाला, संध्याकालीन जो प्रकाश है उसमें, याने मेरे बारे में मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं है, अधूरा ज्ञान है। पूरा अज्ञान होता ना तो प्रवृत्ति ही नहीं होती। पूरे अज्ञान में, पूरे अंधेरे में रज्जू के ऊपर कोई भ्रांति नहीं बनती। ये तकलीफ कहाँ हो गई है? थोड़ा अज्ञान और थोड़ा ज्ञान बना हुआ है, तो जब वो संध्याकालीन अंधेरा होता है तो उसके ऊपर किसी को सर्प नजर में आएगा। जिसको सर्प का बहुत डर लग जाता है ना, उसको सर्प दिखेगा भाई। जिसके घर में सुबह पानी नहीं आया होगा उसको क्या लगेगा कि भाई ये तो पानी है। तो कोई कच्छ से, भूकंप से आया होगा, कच्छ से, भुज से आया होगा कोई, तो वो व्यक्ति को क्या लगेगा, भाई जमीन तो खिसक गई है, जमीन के अंदर छेद हो गया है, तिराड़ हो गई है, ये तो जमीन फट गई है। एक ही रज्जू, धरती फट गई है, पानी जा रहा है, सर्प आ रहा है, या टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, तो ये क्या हुआ, ये जो रज्जू है इसके ऊपर इन सब का अध्यास हुआ है। इन सब क्यों कहते, इन सब किसको कहते हैं? अब एक नियम देख लीजिए कि जिसके बारे में ये सब ऐसा कहा जाता है ना, उसमें से एक भी सत्य नहीं होता है। भ्रांति के समय ही सत्य होता है, ये नियम है। इन सब से क्या है? अरे भाई ये चार बात आपने बता तो दी और दिखा था, हम प्रूफ भी ले आएंगे, ये चारों व्यक्तियों को सामने आके खड़ा कर देंगे तो बोलेंगे हाँ मुझे ऐसा ऐसा दिखा, किसी को पानी, किसी को लकड़ी, किसी को धरती में चीर दिख गया, किसी को सर्प दिख गया, ये चारों दिखे हैं। पर ये चारों सत्य नहीं है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, इन सब ये कोटि में लगा दिया। अब जगत को क्या कह दिया कि ओमकार जो है वो ये सब कुछ है, यानी रज्जू जो है ये चारों है, ऐसे ही ओमकार ये सब कुछ है, यानी क्या, ओमकार तो है ही। हम जब इतना ही स्टेटमेंट सुनते हैं तो मन क्या प्रतिक्रिया करता है कि भाई ओमकार अगर परमात्मा है, ओमकार अगर सत्य है, तो फिर ये जगत भी सत्य हो गया भाई, क्योंकि ये सब ओमकार है, तो जगत सत्य हो गया। पर किस प्रकार हो गया, जिस प्रकार, जिस क्षण, जितने क्षण तक वो सर्प सत्य है, वो पानी सत्य है, वो लकड़ी सत्य है, उतनी ही क्षण तक ओमकार के ऊपर का जो जगत, जो आरोपित जगत है, वो सत्य है, ऐसा समझना है। ये एक बात, एक विचार पूरा हो गया। उपनिषद को क्या कहना है, क्या बताना है कि पहले तो देखिए, ये परब्रह्म जो अक्षर है, परब्रह्म जो अविनाशी है, वो सीधा निर्देश नहीं करना है उपनिषद को, क्योंकि सीधे निर्देश से बात नहीं बनती, सीधे निर्देश से वो मेरी अनुभूति का विषय नहीं होता। अभी तत्वमसी कह देंगे आपको, कहने में देर क्या, गुरुजनों को भी कम बोलना पड़ेगा, ये तो अच्छा है, सीधा निर्देश अच्छा है, दोनों का समय बच जाएगा। पर ऐसा होने से मेरी अनुभूति नहीं हो सकती है, इसीलिए कहा कि मेरा प्रयोजन, उपनिषद कहते हैं कि हमारा प्रयोजन ये संपूर्ण चराचरात्मक जो जगत है वो परब्रह्म का ही नामाभिधान है, यानी जिस जगत को वाणी से, जिस वाणी से हम जानते हैं। उपनिषद में भी कहा है कि इदम सर्वम नाम भी दाम भी ही, ये सब कुछ तो नाम रूप ही है, याने जो वस्तु है वो अपने नाम से, वाणी के उच्चारण से अलग नहीं है। जैसे ये डिश है, तो ये डिश जो उच्चारण जो है, डिश जो नाम है, वो डिश से कितना दूर है, जरा भी दूर नहीं है। और ये नाम की ताकत क्या है पता है, अगर मैं ये कहूँ ना, ये बताऊँ ना, तो पीछे जो एकदम वो भाई बैठे हैं उन्हें दिक्कत होगी। ये आप एकदम दिख रहा है पीछे, एकदम पीछे भाई, हाँ ठीक है, ये गड़बड़ हो गई। ये दिख रहा है क्या है? हाँ थैंक यू। क्या कहा? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, स्टील का कोई सामान है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ, अब कुछ किसी को कुछ नहीं दिख रहा, मेरे पास पेपर वेट है। आपको अभी समझ में आया? पेपर वेट है, ये बुक के ऊपर पत्ता हिल नहीं जाए इसलिए रखते हैं ना वो पेपर वेट। समझ में आया? पेपर वेट है। अब पदार्थ बताने की जरूरत रही नहीं, नाम की ताकत देखी, पूरा पदार्थ दिखाया इतना बड़ा तो तकलीफ है, पर नाम बोल दिया तो बात हो गई। नाम से पदार्थ दूध नहीं है, नाम की वैल्यू पदार्थ से ज्यादा है। हाँ नाम ले लिया तो बहुत हो गया। ये यही कहना है कि ये सब कुछ जो पदार्थ है उसका नामाभिधान एक बार कर दिया, और जिस जिसका नाम और आकार, जिस जिसका आकार है, जिस जिसका जन्म है, उसका नामाभिधान तो हो ही जाता है। तो भाई आप जो नामाभिधान करते हैं उसके लिए जो वाणी का प्रयोग करते हैं, वो वाणी का स्रोत क्या है? तो वो ओम है। तो वो ओम कह दिया तो ये सब कुछ पदार्थ का नामाभिधान हो गया, ये एक बात। और ओम की जो परिपूर्णता है, ओम की जो उच्चता है, वो ये पदार्थ से भी ज्यादा है, ऐसा उपनिषद को कहना है, ये ऐक्य स्थापित करना है। तो भाई ये आप टेबल को ओम आप कैसे कहते हैं? ये तो टेबल है, उसमें टेबल ऐसा आ गया, इसमें ये पुष्प आ गए, इसमें ये पुस्तक आ गई, तो ये सब शब्द क्या है? तो उपनिषद ने कहा कि जैसे वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये विकार शब्द लेना है। यहाँ उपनिषद के ये वाक्य का अर्थ नहीं लेना है, विकार शब्द समझाने के लिए ये रेफरेंस दिया है शंकराचार्य जी ने कि विकार याने क्या, वाणी का विकार याने क्या, कि वाणी तो अ उ और म ही है। ये ओमकार का विकार जो है ये पुष्प हो गया, ओमकार का जो विकार जो है ये टेबल हो गया, ओमकार का जो विकार जो है ये पुस्तक हो गया। कैसे? जैसे रज्जु का विकार जो है वो सर्प हो गया है, तो रज्जु पर मैं बोल क्या रही हूँ? हाँ आप समझ में आया है, तो ओम पर मैं बोल क्या रही हूँ? पुस्तक है, तो लकड़ी मैं बोल क्या रही हूँ? है तो रज्जु, मैं बोलती हूँ लकड़ी। अरे इसमें भी आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, झूठ बोलने में तो कंसिस्टेंसी रखो, झूठ तो सरिता बोलो। तो बोले नहीं, उसमें कंसिस्टेंसी ही नहीं है। है तो पानी, है तो सर्प, है तो लकड़ी, बोलते हैं क्या हम? है तो सब रज्जू, बोलते हैं अलग अलग, तो ये क्या हो गए? रज्जू के विकार हो गए। ऐसे ही ओमकार के विकार क्या है? ये पूरे दृश्य प्रपंच के जितने जितने आपके नाम विकार है, और बाहर के आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से लेके ये हमारा शरीर, कौन सा नाम? तो बोले उर्मिला बहन, ये ज्योति बहन, दिलीप भाई, तो ये जो क्या है, ये नाम जो आ गया, ये यज्ञेश, तो ये जो नाम आ गया, ये नाम दे दिया ना, ये विकार है भाई। तो समझो ये मेरा नाम जो है किसका विकार है? ये तो विकार है, ये तो सच नहीं है, तो मेरा अधिष्ठान क्या है? अगर ये नाम विकार है ऐसा हम आपको समझा दे तो ही आप अधिष्ठान के बारे में सोचेंगे ना। अभी तो इसी को अधिष्ठान मान लिया है, ये शरीर मन बुद्धि का संघात सच है, ये मैं उपाधि जो हूँ वो सच है, तो अधिष्ठान के बारे में हम ढूंढ ही नहीं रहे, कोई प्रयत्न नहीं है। इसीलिए उपनिषद से क्या हमें पता लगाया कि भाई ये तो जो नाम जो है ना, ओमकार के सिवा का नाम है। तेरा नाम ओमकार है? तो बोले नहीं, ओमकार नहीं। तेरे मन का नाम ओमकार है? तो बोले नहीं। बुद्धि ओमकार है? तो बोले नहीं। ये मन, बुद्धि और शरीर के अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग विचार से वो अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यक्ति अलग अलग है, तो ये विकारवान है। तो ये विकारी जो है नाम दे सकते हैं, तो चलो मैं उसके अधिष्ठान के बारे में अब जानना चाहता हूँ, ये सबका कारण क्या है। और ये एक बात हो गई, शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर की बात हो गई। दूसरा क्या क्या विकारवान है? अब जितना जितना विकारवान मेरे भीतर है वो हमें अन्वेषण करना है, सोचना है। ये आत्मा का अधिष्ठान का अन्वेषण मेरे भीतर शुरू होता है कौन से श्लोक से? ओम इति एतत् इदगम सर्वम से। ये अन्वेषण क्या हुआ? ये एक विकार देख लिया। दूसरा विकार क्या विकार हो रहा है? कभी मैं जाग रही हूँ तो ये जागृत अवस्था है, ये अवस्था को भी नाम दे दिया, अवस्था ओम है ऐसा कहते हैं। कोई पूछेगा कि भाई, कोई फोन करके पूछते हैं कि जागो छो के ऊंगी गया तो, अरे भाई तुझे सोते भी होंगे तो भी तुझे जवाब देने के लिए जग गए, टेलीफोन की रिंग बज गई तो हम क्या कहेंगे? भाई ये तो सब अवस्था है, विकार है, ये तो ओम है। आपको सोने जाना है? नहीं, मैं ओम में जा रहा हूँ। आप डीप स्लीप में गाढ़ निद्रा में थे क्या कल? नहीं, मैं ओम में था। ऐसा बोलेंगे? नहीं, मैं जाग रहा था, मैं सो रहा था, मैं सपने देख रहा था। तो ये क्या हो गए? ये आपकी अवस्था के तीन विकार हो गए, जो आपने निर्देश किए, जिसका आपने वाणी से उच्चारण किया। तो हो, ये अगर ये ब्रह्म होता तो कांस्टेंट होता, अगर ये अवस्थाएं सच होती, ब्रह्ममय होती, तो अलग नहीं होती थी। सच नहीं है इसीलिए बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। अरे उसका नाम भी दिया जाता है विच इज अदर देन ओम, विकारवान है। तो चलो मैं इसके अधिष्ठान के बारे में अब जानना शुरू करूं। ओहो, पर फिर से अभी तो अधिष्ठान के बारे में सोचेंगे तब दूसरे विकार दिखने लगेंगे। शरीर में जितने भी विकार हैं पहले उसे देख लो, पहले उसे परख लो। क्यों? क्योंकि सीधे ब्रह्म के अधिष्ठान के बारे में थोड़ा सुन के भाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो देव और दानव की बातें याद है ना? देव इंद्र भगवान को भी उपदेश दे दिया, दानवों को भी उपदेश दे दिया कि भाई ये ब्रह्म है। तो भाई क्या ब्रह्म है? तो अभी तो गुरु अभी पूरा नहीं करते हैं और हाँ मैं ब्रह्म को जान लिया ऐसे चले जाते हैं। फिर अपना गुरु के प्रदेश से जब जा रहे हैं तो रास्ते में पानी में अपना प्रतिबिंब दिख रहे हैं, तो भाई क्या जाना? गुरु ने फिर से बुलाया, वे पूरी आख्यायिका के बारे में नहीं बता सकते। फिर से पूछा कि भाई तूने ब्रह्म को कैसे जाना? तो बोले ये जो प्रतिबिंब मेरा दिख रहा है ये ब्रह्म है, ये चक्षु में जो दिख रहा है ये ब्रह्म है। ऐसे सब ने अधूरा सुन के ब्रह्म के बारे में जान लिया, तो किसी ने अन्न को ब्रह्म मान लिया, किसी ने प्राण को ब्रह्म मान लिया, मन को ब्रह्म मान लिया। क्यों? क्योंकि विकार को पूरी तरह नहीं जाना। तो ओंकार के माध्यम से पहले अपने भीतर के जो विकार है उसे पूरा जान लो। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है हमें, कोई बैक्टीरिया, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेना। तो एक बार नहीं, 10 बार हम डॉक्टर को पूछते हैं भाई कितनी गोली लेनी है, कितने कितने घंटे लेनी है, कितना ख्याल रखते हैं। क्यों भाई इतना ख्याल रखा? भाई एक भी अगर जो बैक्टीरिया रह गया तो वो पोटेंट है। क्या है? पूरा जो डिजीज है वो रिलैप्स करने के लिए उसकी शक्ति है उसमें। ऐसे कितने भी भारी एंटीबायोटिक आपने ले ली, एक भी रह गया पार्ट उसका, तो मेहनत खत्म। भारी अपने हमने साधना कर ली, जब तक तीर्थ यात्रा मरण चिंतन निधि ध्यान सब कुछ कर लिया, पर ये विकार को पूरा नहीं जाना, थोड़ा अहंकार रखा कि ये तो सब मैं जान रही हूँ, मुझे कुछ पता है, ये जो मेरे आजू बाजू जो समाज जी रहा है उससे थोड़ा मैं ज्यादा जानती हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा विद्वान हूँ, बस इतना ही जो विचार जो है वो फिर से आपको जीरो में ला के रख देगा। पूरा कोर्स फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नहीं तो पूरा कोर्स आपको फिर से करना पड़ेगा। तो हम भी ऐसा कहते हैं, इसलिए हम बार बार आते हैं ना, प्रस्थानांतरण फिर से करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको फिर से वो सब करना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब प्रकरण ग्रंथ पूरा भगवद गीता सब उपनिषद सब ब्रह्मसूत्र फिर से पढ़ना है, ठीक है? तो विकार को पूर्णतया जान लीजिए। पहले विकार को क्या जाना? दो दिख रहा है वो स्थूल विकार, सूक्ष्म और कारण देख लिया। दूसरा कौन सा विकार है? तो दूसरा विकार है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, हमने जान लिया। भाई तीसरा क्या कुछ हो रहा है? तो बोले कि देखिए अभी आपको ये जो हम बता रहे हैं ना, अब आपको पता लगेगा कि ये प्रकरण ग्रंथ अगर आपने नहीं पढ़े होते और ये प्रवचन, ये उपनिषद का प्रवचन हम प्रेमपुरी में ही कर सकते हैं। उसका कारण है कि हमें पता है कि यहाँ बैठने वाले प्रकरण ग्रंथ सुन के बैठे हुए हैं, नहीं तो एक से शुरू करना पड़ता तो उपनिषद का प्रारंभ भी लास्ट दिन में होता, हो ही नहीं सकता था। अब आपको इसकी वैल्यू, इसकी कीमत पता लगेगी कि प्रकरण ग्रंथ याने क्या। अभी विकार हमें और दिख रहा है, कौन सा विकार दिख रहा है? तो बोले कि भाई कोई कोष नामक विकार है, उसके बारे में भी ध्यान रखना है, सोचना है। तो बोले कौन सा कोष है? तो बोले अन्नमय कोष है। तो ये अन्नमय में ओम है। बोले किसी को आप पूछेंगे कि भाई ये क्या है तेरा शरीर? तो बोले ओम है। तो नहीं, ये अन्नमय कोष है। अन्नमय कोष के बाद क्या आता है? तो बोले प्राणमय कोष है। और इसीलिए शंकराचार्य जी ने ये मंत्र का भाष्य शुरू करने से पहले जो संबंध भाष्य लिखा, संबंध भाष्य में ये बात उन्होंने बताई है कि रज्जु सर्प, रज्जु के ऊपर सर्प आदि विकल्प है, ऐसे ही आत्मा के ऊपर प्राण आदि विकल्प है। तो प्राण आदि जो विकल्प है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, तो ये आत्मा के ऊपर जो विकल्प है, यानी यही आत्मा कभी अन्नमय कोष जैसा लग रहा है, कभी प्राणमय, कभी मनोमय जैसा लग रहा है, तो ये नाम जो दे रहे हैं वो नाम वाणी से विकार है। ये वाणी का मूल स्रोत क्या है? वो ओम है। तो प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय जो वाणी है वो ओम है। तो आप बराबर थोड़ा सोचिए, प्राणमय शब्द जो है वो प्राणमय कोष से कितना दूर है? थोड़ा भी दूर नहीं है। तो ये प्राणमय शब्द और ये प्राणमय कोष, ये दोनों तो एक हो गए। अब कहते हैं कि ये प्राणमय जो शब्द जो है वो किसका विकार है? तो बोले ओमकार का विकार है। सब वाणी विकार ओमकार के हैं, तो ये ओमकार प्राणमय कोष हो गया ना, ठीक है? ओमकार प्राणमय कोष हो गया, अन्नमय कोष ओमकार, मनोमय कोष ओमकार, विज्ञानमय कोष ओमकार, आनंदमय कोष ओमकार, यानी पूरा दृश्य प्रपंच जो है वो क्या हो गया? पूरा ओमकार हो गया। पर है क्या ये सब? ओ हो, आत्मा के ऊपर ही विकल्प है, आत्मा के ऊपर ही ये भास रहा है, दिख रहा है। अंत में तो ये सर्प है, अंत में ये लकड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी लकीर जो दिख रही है, पानी दिख रहा है, वो अंततः क्या है? तो बोले रज्जु ही है। बस ऐसे ही सब प्राणादि विकार है वो परमात्मा है, आत्मा ही है, अधिष्ठान रूप ही है, और वो अंत में क्या है? वो ही ओम है। इसीलिए ये जो ओम है इज इक्वल टू ये आत्मा है, इज इक्वल टू ये सर्वादृश्य प्रपंच है, ये ऐक्य करना है। ये जब समझ में आ गया तब ये ओम इति एतद अक्षरम इदगम सर्वम, ये उपनिषद का जो उद्देश्य जो है वो यहाँ आके पूर्ण होता है कि सर्वात्मक जो जगत चराचर है वही ओम है, वही आत्मा है, ये है सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि। आपने गुरुजनों के मुख से कितनी बार, हजारों बार सुना होगा, भाई गुरुजी मुझे क्या करना है? भाई सब में ब्रह्म देखो, सब में ब्रह्म देखो, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि। ये हमें पाठ हो गया है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करो भाई। तो ये सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि ऐसे होती है, हाँ, एक बार बराबर ठोस उसके कारणों के साथ पूर्ण तर्क के साथ अगर जान लिया, युक्तिपूर्वक जान लिया, युक्तिपूर्वक सर ज्ञान जो है वही आपको शांत से यथार्थ ज्ञान बता सकता है। बाकी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, सिर्फ मुख से सर्वत्र ब्रह्म देखेंगे ना तो वो नहीं हो सकेगा। पूरा बाह्य दृश्य प्रपंच से हमारे खुद के शरीर के भीतर के विकार जब तक आप नहीं ढूंढेंगे ये नहीं हो सकता। तो तीनों शरीर का विवेक होगा, और ये जो आपने जो ये अवस्था त्रय विवेक किया, ये जो अवस्था त्रय को विकार समझ के ओंकार कह दिया, ये शरीर तीन शरीर का जो विवेक किया, ये पांच जो हमारे कोष जो है, ये कोष जो है वो विकारवान नामाभिधान है, वो ओंकार ही है, ऐसा उसे विचार कर लिया, ये विचार को क्या कहते हैं भाई? विवेक कहते हैं। हाँ, इसी को विवेक कहते हैं। विवेक यानी क्या? कि ये सबको मैं अहमतया मेरा स्वरूप मान रही थी, अब विवेक से उसे मैं मानती हूँ पर अनित्यतया मानती हूँ। अभी विवेक आ गया इसलिए मुझे पता लग गया कि ये है तो सही पर भ्रांति है, कल्पना है, विकल्प है, ये विकार है, हकीकत में ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये है ये नहीं उसकी चिंता छोड़ दो, ये मैं नहीं हूँ ऐसा सोचना उपनिषद आपको सिखाता है। क्योंकि ये है नहीं ऐसा सोचेंगे तो ये शरीर तो दिखता है ना, आत्म साक्षात्कार के बाहर भी पूरा शरीर दिखता है, तो अड़चन हो जाएगी और कंफ्यूजन इसी में रहेगा कि शरीर मन बुद्धि का संघात तो वैसा का वैसा ही है, पहले भी प्यास लगती थी अभी भी लगती है, तो फर्क क्या हो गया? भई ये मैं नहीं हूँ, मेरा अभिमान उससे हट गया, ऐसा सोचना आप शुरू कर दीजिए। तो ये जो तीनों चीजें आपने की ना, तो ये अवस्था त्रय का क्या किया? विवेक किया। ये पंचकोश का क्या किया? विवेक किया। ये तीनों शरीर का क्या किया? विवेक किया। इसी को विवेक कहते हैं। और ये विवेक को समझाने के लिए पूरी प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि का ग्रंथ आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, इसीलिए हम उसे पढ़ाते हैं पहले। तो यही ये विवेक है। ये एक छोटे विवेक शब्द को समझने के लिए आपको पूरा विवेक चूड़ामणि पढ़ना पड़ेगा। 500 से ऊपर उसके श्लोक है एकमात्र विवेक शब्द सिखाने के लिए। और अगर वो आपने मन लगा के कोई गुरु से पढ़ लिया तो ही ये विवेक जो है तत्क्षण आपके जीवन में आचरित हो जाएगा। तो ये जो पहला जय ओम इति एतत् इदम् अक्षरम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यत्, इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। अब जो दूसरा मंत्र है उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। सर्वम हि एतद् ब्रह्मा सर्वम हि एतद् ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा सोयमात्मा सोयमात्मा चतुष्पात चतुष्पात। अब ये उपनिषद का जो परम लक्ष्य है, जो परम प्रयोजन है, और उसकी पूर्व भूमि का रूप क्या हो गया, पिछले 3 दिनों से जो विचार किया, बहुत संक्षिप्त में विचार है ये, फिर भी सीधा महावाक्य का उपदेश नहीं दे सकते,